ओम शांति। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। आज के लिए कहा था कि जो विश्व भर में 17 गोल्स डिसाइड किए गए हैं, लक्ष्य, विश्व भर की सारी कंट्रीज बैठ के सितंबर 2015 में, और सारी कंट्रीज ने मिलकर ये 17 गोल्स, 17 लक्ष्य डिसाइड किए थे कि ये गोल्स जो है वो 2030 तक इन सबको मिलकर अपने अपने देश के लिए कंप्लीट करने हैं। तो होमवर्क दिया गया था कि ये 17 गोल्स हम इसमें क्या योगदान देंगे या हम इसमें क्या करेंगे ये गोल्स में, एक एक गोल्स में। तो हम एज अ बीके इसमें क्या कर सकते हैं हर गोल में, और स्पिरिचुअली उस पॉइंट को हम कैसे लेंगे, तो इस पर डिस्कशन करना है। तो इसमें 17 गोल्स हैं, 17 विकास लक्ष्य जैसे उसका नाम है, 17 सस्टेनेबल गोल्स। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, पावर्टी, गरीबी की सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। तो विश्व भर के लोग तो कैसे गरीबी को मिटाएंगे वो करेंगे, तो हम इस गरीबी वाले पॉइंट को स्पिरिचुअली कैसे लेंगे। तो जैसे कि हमने इस पॉइंट को 4 भाग में डिवाइड किया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कि हम में कौन सी गरीबी है, ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवा में। तो सबसे पहला ज्ञान में, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि कम से कम 1 घंटा पढ़ाई को जरूर देना है, जो ज्ञान की कमी है उसको कंप्लीट करना है, तो 1 घंटा पढ़ाई को रोज देना है। पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन याद नहीं रहता, बहुतों की ये शिकायत रहती है कि हमको याद नहीं रहता। तो जो भी हम पढ़े उसको हम रिवाइज करें, कम से कम जैसे यहाँ पे चर्चा हो चुकी है कि 24 घंटे में एक बार उसका रिविजन होना चाहिए। जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो अव्यक्त मुरली है या साकार मुरली है या कोई भी टॉपिक है, तो उसको 24 घंटे में जब रिवाइज करेंगे तब वो हमारे मन में बैठेगा, तो रिविजन होता है एक। दूसरा जैसे कि स्पिरिचुअल शॉपिंग, जैसे लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी जैसे हमारे इतने सारे लिटरेचर है, तो क्या हमको सब पता है कि हमारे पास कौन सी बुक्स है यज्ञ की? जब हमको पता होगा तभी हम दूसरों को गाइड कर पाएंगे कि ये बुक्स हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा लिटरेचर में क्या क्या है, तो बुक्स पता होनी चाहिए। तीसरा, ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुभव पढ़ना। जो पुराने हैं उनको सब अनुभव पता है, जो पुराने हैं उनको यज्ञ की हिस्ट्री पता है, यज्ञ के जो आदि रतन हैं उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जो नए आए हैं वो नए लोगों को अनुभव इतना नहीं पता है। कि जैसे उस दिन वो आदि रतन बुक के ऊपर जो सब फोटोग्राफ्स है ना, तो हम लोग बैठ के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा परिवार कौन सा है ना, अब हम अपने परिवार को ही नहीं जानेंगे। तो अनुभव पढ़ने से भी बहुत उमंग उत्साह आता है। तो ये भी जैसे कि हमारे में गरीबी है, अगर हमको हमारा परिवार ही नहीं पता है तो जैसे हमने रात की क्लास में वहां पे चालू किया है कि हम हर हफ्ते एक अनुभव पढ़ते हैं। तो जैसे लास्ट वीक हम विश्व किशोर दादा का अनुभव पढ़ रहे थे, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें थी उसमें। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे बताते कि जब मम्मा बाबा को कहीं पर ट्रैवल करना होता था, मुंबई जाना होता था, तो दादा जो थे भाऊ, उनकी इतनी पहचान हो गई थी ट्रेन वालों से कि वो ट्रेन वालों को बोलकर बाबा के लिए एक अलग सा फर्स्ट क्लास का डब्बा बिठवाते थे, लगाते थे ट्रेन में, और इतना ध्यान रखते थे कि जो जब बेड पे बाबा सोएंगे तो उस बेड के नीचे व्हील्स नहीं होनी चाहिए ताकि बाबा की नींद डिस्टर्ब ना हो। इतना ध्यान देते थे विश्व किशोर दादा, इसलिए कहते थे ना कि नारायण का किशोर बनने का पुरुषार्थ किया उन्होंने। तो ऐसी बातें थी। और उसमें और भी दिया था कि रमेश भाई के घर पे मम्मा जाने वाले थे काफी महीनों के लिए रहने के लिए, बाबा मम्मा। तो पहले उन्होंने चेक किया रमेश भाई को, तो पहले वो उनके घर गए एक बार, और अभी रमेश भाई ने सोचा कि मैं तो गृहस्थी हूँ, ये मेरे घर पे कैसे खाएंगे। तो उंधिया की सब्जी बनी थी और वो खा रहे थे, हाँ, और फिर है ना रमेश भाई ने खाना चालू कर दिया और भाऊ बैठे थे, तो उन्होंने कहा रमेश भाई तुम मुझे नहीं बोलोगे कि खाना खाओ? तो बोले हम तो गृहस्थी ठहरे, आप हमारे घर का कैसे खाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो खाऊंगा आपके घर का। तो तुरंत प्लेट लगवाई और खाया, और उसमें बहुत रमणीक बातें लिखी है ऐसी कि उन्होंने उषा बहन जी को कहा कि ये सिंधी लोग हैं, ये लोग आलू नहीं खाते तो इसमें से आलू निकालो। नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा, ऐसी सब बातें उसमें। और उसमें कैसे रमेश भाई की कार ड्राइविंग चेक की, भाऊ ने उनको बोला कि मुझे जाना है तुम सेंटर पर आ जाना, तो ये रमेश भाई अपनी कार लेके जाते हैं, और फिर ये भाव कहते हैं मैं अपना पेपर भूल गया तुम वापस गाड़ी टर्न करो। ऐसे इन्होंने 2-3 दिन किया जानबूझ के। तो फिर तीसरे दिन कहा कि अब तो तुमको समझ में आ गया होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो रमेश भाई ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है 3-4 दिन से, आप मुझे लेके जाते हो, आप बोलते हो पेपर भूल गया, फिर आप मुझे गाड़ी टर्न करने बोलते हो। तो भाव ने कहा कि मैं आपकी कार ड्राइविंग टेस्ट कर रहा हूँ कि है ना जिस कार में विश्व महाराजा और महारानी बैठने वाले हैं उसकी कार ड्राइविंग ठीक तो है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं वो आदि रतन बुक में, तो हम उस बुक को भी पढ़ सकते हैं हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्लासेस, जो क्लासेस हम सुनते हैं, जैसे हम मॉर्निंग क्लास यहाँ पे सुनते हैं, उसमें कुछ होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क करना है जाकर। दूसरा हमने एक बात देखी कि हम एक बार जो क्लास सुन लेते हैं वो पूरी तरह से हमको याद नहीं रहती कि उसमें क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो हम बैठ के सुन लेते हैं तो जाकर दिन भर में अगर हमको टाइम मिले तो एक बार उसको वापस सुनना है। जब हम वापस सुनते हैं तो हमको और पॉइंट्स मिलती है जो हमने शायद मिस कर दी होगी यहाँ पर। तो वो एक अच्छी आदत है अगर हम उसको वापस दोबारा सुने। और जो भी होमवर्क मिले वो करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कनरस हो कि क्लास सुन लिया बहुत मजा आ गया और चले गए यहाँ से। तो ये ज्ञान। फिर सेकंड योग की पॉइंट, तो योग में जैसे सबकी शिकायत रहती है कि कर्म योग में प्रॉब्लम होती है कि कर्म योग में क्या करें, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए सबके लिए अपने अपने पुरुषार्थ में कि कर्म योग में एक्चुअली क्या करना चाहिए। कभी कभार हम ज्ञान पढ़ते रहते हैं लेकिन योग पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे बाबा कहता है ना कि एक घंटे में एटलीस्ट 1 मिनट अशरीरीपन की ड्रिल करो, तो क्या करें उसके लिए। तो जैसे हम एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखते हैं, वो एक पेपर पर ना लाइन्स खींच के रखते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया है, वो लाइन्स ड्रॉ करके रखते हैं और जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है वो अशरीरीपन की ड्रिल करते और उस पर क्रॉस करते जाते। दिन के एंड में उनको पता चलता है कि देखो मैंने इतना किया। तो ये अलग अलग युक्ति है, तो हम हमारे पुरुषार्थ में ऐसा क्या करें, या मॉर्निंग में कुछ प्लानिंग कर ले कि ये करना है हमको। तो ये योग, और जैसे कि योग का चार्ट 4 घंटा बढ़ाना है, जैसे अभी अव्यक्त मास आ रहा है तो सब अलर्ट हो जाएंगे, तो 4 घंटा योग का चार्ट बढ़ाना है। और मतलब उसको कैसे, ऐसे नहीं कि अगर हमारा 2 घंटे का चार्ट है तो हम बोले कल से मैं 4 घंटा करूंगी, तो नहीं होगा। लेकिन उसको ग्रेजुअली 15-15 मिनट 10 मिनट कहीं ना कहीं एडजस्ट करते करते बढ़ाना पड़ेगा। फिर धारणा की पॉइंट, तो धारणा हमें कैसे आती है, जब हम किसी पॉइंट पर चिंतन करते हैं चर्चा करते तब वो हमारी धारणाओं में आने लगती है वो पॉइंट्स। तो जैसे कल रात में हम संडे की मुरली पढ़ रहे थे, 31/12/99 की मुरली है, उसमें एक पैराग्राफ इतना पावरफुल है कि बाबा उसमें, और बाबा एंड में बोल भी रहे हैं कि ये डोज ज्यादा तो नहीं हो गया, आज डोज ज्यादा तो नहीं दे दिया, ऐसा है। और उसमें बाबा ने कहा है कि कैसे, 2 बातें सुनाई थी, उसमें से एक बात ऐसी थी कि बच्चे जो है ना वो व्यर्थ बातें भूलते नहीं हैं, चाहे वो मन की प्लेट हो कागज हो, लेकिन उस पर रह जाती है बीती बातें और व्यर्थ बातें मन पर रह जाती है और वाइब्रेशन के रूप में भी वो रह जाती है। तो जैसे बाबा ने एग्जांपल बताया कि स्लेट पर अगर आपने क्लीन नहीं किया ठीक से और फिर आप उस पर लिखने जाओ तो स्पष्ट नहीं रहेगा ना, कोई भी बोर्ड है अगर हमने उसको डस्टर से क्लीन किया लेकिन वो ठीक से क्लीन नहीं हुआ और उसी पर हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे भरेगा। तो ऐसे ही हम गुणों और शक्तियों को अपने में भरने की कोशिश करते लेकिन नहीं भर पाते क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहला कुछ भरा हुआ है। तो वो पैराग्राफ हम लोग रात में 2-3-4 बार पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो धारणा में पॉइंट्स हमारी कब आती है, जब हम उसको चिंतन करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमको जब टॉपिक मिलती है तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि पहले हम करें वो, जैसे हमको वो 12 ड्रिल्स की 12 गीतों की मिली, तो पहले हमने उसको ट्राई किया कि हम कैसे कर पाएंगे, तब हम दूसरों को बताएंगे ना कि क्या करना है। तो ऐसे धारणा की पॉइंट्स। और सेवा, सेवा में जैसे गरीबी वाला पॉइंट है ना, ये एक बार सूरज भाई जी के क्लास में सुना था, उन्होंने अपने भाई को कहा था कि अगर आपके पास धन है तो उसको कैसे सेवा में लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार से उन्होंने कहा, जैसे आपके सेंटर पे कोई माताएं हैं जो बाबा मिलन के लिए नहीं आ सकते हैं, है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, तो आपका पुण्य का खाता आप बढ़ा सकते हो अगर आप हर साल किसी 2 व्यक्ति को बाबा मिलन के लिए लेके आए, तो ये भी एक सेवा है। जिनके पास धन है वो ये सेवा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे लेकिन बाबा को नहीं देखा। एक भाई ने बताया, उनके सेंटर पे एक भाई है जो 22 साल से ज्ञान में है और उन्होंने 22 साल में कम से 5 दिन ही क्लास मिस की होगी, अदरवाइज रेगुलर है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो बाबा को आके मिले। तो ऐसी आत्माओं की मदद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, पावर्टी, गरीबी। सेकेंड, भूख, हंगर, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि का बढ़ावा। तो हंगर, तो भूख, तो अभी हमें कैसे, तो जैसे कि हमारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता हो या हमारे में सेवा की उत्सुकता हो कि हमको सेवा करनी है, हमारा हाजी का पार्ट बहुत पक्का होना चाहिए। अभी इस पॉइंट को स्पिरिचुअल लेवल पे ले रहे हम, तो एक बुक है समर्पण करके, एक बुक है इंग्लिश में लिखी है, मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क, वो दादी जानकी के साथ का अनुभव लिखते हैं उसमें। तो उसमें एक बहुत छोटा सा अनुभव है कि बाबा में सेवा की कितनी लगन थी और कैसी भूख थी। तो दादी जानकी एक बार पंजाब से पार्टी लेकर आए और तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ हैं, तो बोला वो लोग सब स्नान नान करके अभी भोजन के लिए गए हैं। ऐसे करते रात हो गई, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चों को बुलाओ, क्योंकि बाबा जैसे ही बच्चे आते थे तो उनसे मिलते थे, और जब बाबा मिलने लगे तो चिटचाट इतनी देर तक चलने लगी कि रात के 1 बज गए और फिर बाबा ने सबको विदाई दी। और फिर बाबा ने दादी से कहा कि देखो मैं बच्चों से मिले बिना बाबा रह ही नहीं सकता, बाबा सेवा के बिना रह ही नहीं सकता चाहे रात के 1 बज रहे। तो कैसे वो उत्सुकता थी सेवा की, तो ऐसे होना चाहिए। इस पॉइंट को दूसरे पहलू पर ले सकते हैं, जैसे कि हंगर ना, तो अंदर में जो इच्छाएं हैं वो सब कम करनी है, अंदर में जो कामनाएं हैं वो सब कम करनी है। और जैसे यहाँ पर तो भूख का कोई सवाल ही नहीं, हम बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहता है, एक ज्ञान की भूख है, एक स्थूल भूख है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे 2 साल पहले जब यहाँ पर मानसून में वो गिर गया था ना, वो तो टूट गया था, तो माउंट में इतना प्रॉब्लम हो गया था कि लोगों के पास भोजन भी नहीं पहुँच रहा था, सब्जी नहीं पहुँच रही थी, लेकिन हमारा यज्ञ पूरा भरपूर, जो गुरुवार का भोग लगना था वो वैसे ही लगा, ब्रह्मा भोजन वैसे ही बना, हमको पता भी नहीं चला कि कहीं कुछ भूख की जैसी कोई वो है। तो ये सेकेंड पॉइंट, अभी तो नहीं चलो, हेल्थ, थर्ड पॉइंट हेल्थ, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। तो हेल्थ, तो हम सब जानते हैं कि अगर शरीर अच्छा है तो ही हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, अगर बीमार है तो पुरुषार्थ नहीं होता, तो शरीर पर भी ध्यान देना है। इसीलिए जिनकी एज 35-40 प्लस है उनको एटलीस्ट साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। और कोई भी बीमारी आई तो उसको तुरंत डॉक्टर को बताना है, ऐसा नहीं कि हम उसको लंबा खींचे, है ना, तो लंबा खींचने पर वो बढ़ जाए और फिर हम ये ट्राई करें वो ट्राई करें और फिर डॉक्टर के पास बाद में पहुंचे जब बीमारी बहुत आगे पहुंच गई हो, तो वैसे नहीं करना है। और तीसरी बात कि बीमारियों को पकड़ कर भी नहीं रखना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने आप पर कि ये जूस पीऊँ, वो जूस पीऊँ, ये करेला पीऊँ, ये मेथी खाऊँ। तो मतलब कभी कभार हमारे पास पेशेंट आते हैं और मतलब डोर तक निकलते निकलते भी उनके सवाल ख़त्म नहीं होते कि ये अजवाइन खाऊँ, ये जूस पीऊँ, इसको मतलब इसमें ये डालूँ, उसमें वो डालूँ, ये काढ़ा बनाऊँ। तो वैसा भी नहीं करना है, उतना भी अपने आप पर ध्यान और उतना भी अपने आप को वो नहीं करना है कि इतना डिस्टर्ब हो जाए उससे। दूसरा, हम हमारे पुरुषार्थ में हमेशा एक पॉइंट रखते हैं कि बीमारी अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। तो बीमारी आने पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है, और ज़्यादातर ये पॉइंट उन लोगों को जाती है जो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे हैं। जैसे कि किसी को सर्दी खांसी आई, बुखार आई, लूज मोशन हुआ, तो वो ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। लेकिन किसी को आर्थराइटिस है, किसी को बॉडी एक है, किसी को पेट में दर्द है, जो लंबे लंबे समय तक बीमारी होती है उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो उन लोगों को अपने पुरुषार्थ में अच्छी पॉइंट्स जमा करके रखनी पड़ेगी कि जब बीमारी आती है तो कैसे पुरुषार्थ करना है वो टाइम। फिर फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये मतलब इसका शॉर्ट में है एजुकेशन, लोगों को कैसे नॉलेज देना वो। तो इसमें जो टीचर्स है हमारे यज्ञ में, लौकिक में, उनके लिए बड़ी अच्छी पॉइंट है ये कि वो लोग देते तो होंगे ही ज्ञान, तो वो कैसे है ना, जैसे 2017 में अपने लक्ष्य बनाए कि हम कैसे लोगों तक ज्ञान पहुंचाएंगे। तो एक भाई अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, उनके शहर में एक हाई स्कूल है और वो 8th, 9th और 10th को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। तो जो भी बच्चा उस स्कूल से निकलता है ना, तो उसको आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, सृष्टि, चक्र, ये सब पता होता है। और अगर वो एरिया की 10,000 पॉपुलेशन है, तो 10,000 में सिर्फ 500 होंगे जिनको नहीं मन होगा आत्मा परमात्मा, बाकी वो एरिया के 10,000 लोगों को पता है आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, चक्र, शिव बाबा क्या है। ये बड़ी युक्ति से सबको ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे हमको भी किसी ना किसी तरह से लोगों को ज्ञान देना है। कोई बता रहा था कि हरियाणा में 4th स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक में ब्रह्मा बाबा का एक छोटा सा पैराग्राफ है 4th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में। तो हमको ये सब पता होना चाहिए, तब हम दूसरों को बता पाएंगे। और उसमें राहुल गांधी का भी पैराग्राफ है ऊपर, लेकिन नीचे उसमें बाबा का भी पैराग्राफ है कि ये कैसे परमात्मा की प्रवेशता हुई, ऐसे छोटे से इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। और जैसे कि और पॉइंट्स है, सुबह 6 बजे के टाइम पे जैसे लोग न्यूज़ देखते हैं ना, आज तक सबको पीस ऑफ माइंड अभी भी नहीं पता है, लेकिन आज तक तो सब लोग देखते हैं न्यूज़ के लिए। तो सुबह 6 बजे का जो स्लॉट है वो हमको दिया हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसको, और हमारा कोई भी प्रोग्राम आता है उस पर, तो हम जब किसी से ज्ञान चर्चा करते हैं तो उनको बता सकते हैं कि आप ना ये देख सकते हो। कभी कभार पीस ऑफ माइंड देखने में वो हिचकिचाते हैं, तो ये तो देख सकते हैं ना। चौथा, जैसे हमारे कोर्सेज है, ये वैल्यू एजुकेशन कोर्स है, MBA कोर्स है, इसमें बड़ी युक्ति से अपना ज्ञान इंक्लूड किया हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन, राजयोगा, उनके थीसिस भी वैसे होते हैं। तो जब हम जो एजुकेटेड लोगों से बात करते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि आप ना ये कोर्स कर सकते हो, बड़े उससे कि आपकी एक डिग्री बढ़ जाएगी, ऐसे करके वो कुछ कर सकते हैं। जैसे हम जब बॉम्बे में थे और हम EMS कर रहे थे, तो हमारे साथ एक जो थी, तो हम भी वैल्यू एजुकेशन करते थे और हम उसके सामने ना वो बुक्स पढ़ते थे, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टेड हो गई और उसने भी वो कोर्स किया। ऐसे ही MBA के जो कोर्स है उसमें भी है ना, MBA की तो टॉपिक्स है लेकिन हमारी भी बहुत सारी टॉपिक्स है उसमें, तो लोग वो पढ़ेंगे तो उसके थ्रू उनको ज्ञान मिलता है, तो इनडायरेक्टली लोगों को कैसे ज्ञान देना है। फिर 5वां पॉइंट, जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। तो इसमें जो ऑब्वियसली हमारी जो संस्था है उसमें चाहे भाई कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन बहने ही हेड्स है हमारे यहाँ, है ना। तो बहुत नहीं, महिलाओं को इसमें महिलाओं को समानता देना था। तो यहाँ पर थोड़ा ये है, जैसे हमारे बहने ही हेड्स है इसमें. फिर छठा पॉइंट पानी, वाटर. नहीं इसमें ना महिलाओं को नीचे रखते हैं ना, महिलाओं को वैसा, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है कि महिलाओं को भी ऊपर लाना है, आगे बढ़ाना है. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये छठा पॉइंट, वाटर पानी. तो इसमें जैसे कि कोई भी ओशन है, कोई भी लेक्स है, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, तो हम हमारे नक्की को बड़ा स्वच्छ रखें. बहुत लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि चॉकलेट खाते हैं या रैपर सीधे ऐसे फेंकते हैं नक्की में, जैसे नक्की डस्टबिन है. तो वैसे नहीं करना है, कैसे पानी को भी स्वच्छ रखना है. किसी की आदत होती है थूकने की, कहीं पर भी थूक देते हैं, पानी में भी थूक देते हैं, तो वो कैसे स्वच्छ रखना है उसको. सातवीं पॉइंट है एनर्जी. एनर्जी मतलब वो है सोलार एनर्जी, वैसी सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ, हाँ, और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना. तो हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा सोलार प्लांट है इसमें, है ना, जो नीचे सोलार प्लांट लगा हुआ है. उसमें कहते हैं कि 40 इंजीनियर्स लगे हैं उसके पीछे, उसको सफल करने के लिए, और उसका इनॉग्रेशन भी अभी जनवरी में. तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको सकाश दे एवरीडे. ये हर पॉइंट में हम हर चीज को सकाश दे सकते, तो उसको सकाश देना सोलार प्लांट को. आठवीं पॉइंट इकोनॉमी. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना. अभी इसमें हमने इसको स्पिरिचुअली ऐसे लिया कि कंटिन्यूस ग्रोथ कैसी हो हमारी. तो जैसे हम यहाँ पे क्लास करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एक टर्निंग पॉइंट देनी चाहिए. हर दिन जैसे तो हर दिन यहाँ से एक होमवर्क मिलना चाहिए. कभी कभार डॉक्टर सचिन होमवर्क देते हैं ना, जैसे उस दिन दिया कि एम्पावर योर सेल्फ पढ़ो जाके, या उस दिन था कि भगवान का गृहस्थी जीवन, है ना. तो ऐसा कोई पॉइंट हमको एवरी डे आप लोग देना. तो और है ना, हमने ये भी सोचा कि मनसा सेवा जो हम यहाँ पे बैठ के करते, अभी तो वो बंद हो जाएंगी 1 जनवरी में, लेकिन मॉर्निंग में जब मनसा सेवा की सकाश वाले 12 मिनट कॉमेंट्री. हाँ दिन वही तो बताना है, वही होमवर्क है. तो जैसे 60 ग्रुप्स या 62 कितने ग्रुप्स हुए ना उसमें, तो मॉर्निंग में हम सब लोग मिलकर एक बार सकाश देते हैं उसको, लेकिन दिन भर भी उसको बार बार देने. कम से कम ऐसे रखना है कि 5 बार हम देंगे. जैसे कोई ग्रुप को सकाश दी, गरीबों को अगर मॉर्निंग में सकाश दी, तो दिन भर में हम उनको कम से कम वापस 4-5 बार सकाश दे. तो वैसे हम बिजी भी रहेंगे. हाँ, और चीजों में इकोनॉमी करना. जैसे है ना, वो बुक पढ़ रहे थे तो उसमें था कि दादियाँ कैसे कहती थी कि कम साधनों में कैसे यूज करना. जैसे उस दिन भाई जी सुना रहे थे ना कि अगर कुछ कुर्ता भी फट जाता था तो कैसे सिलाई करके देते थे. तो इस तरह से कम, ऐसे नहीं कि 10-10 जूते लगे हुए हमारे रूम में और इतने सारे स्वेटर और जैकेट्स लगे हुए हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए. कम साधनों में कैसे संतुष्ट रहे. फिर 9वां पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन. लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा. तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारे यज्ञ में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जैसे हमारे रिट्रीट सेंटर्स जो बन रहे हैं अभी, जैसे पूना में मम्मा का स्तंभ बन रहा है, हाँ, जगदम्बा भवन, है ना. तो ऐसे कहीं कहीं बड़े सेंटर्स बन रहे हैं, तो हम अगर जो धन से सेवा कर सकते हैं तो उन्होंने जरूर सेवा करनी चाहिए. हम हमेशा सोचते हैं कि पांडव भवन की ईंटें लगाने में जिनके धन लगे होंगे उनका कितना बड़ा भाग्य है. और शांति स्तंभ बनाने की भी अपनी स्टोरी है कि एक बहन ने कैसे पैसे लगाए थे उसको, तो कितना भाग्य बन गया उन लोग आत्माओं का. तो अभी हमारे सामने ये सब चीजें हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से कर सकते हैं मदद. और दूसरा, सकाश तो हम सबके पास है, तो हम सब सकाश दे ही सकते हैं इन सब स्थानों को. 10वीं पॉइंट देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन और अमंग कंट्रीज. तो यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी का पॉइंट ले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50 साल वाला ज्ञान में और 1 हफ्ते जो ज्ञान में चल रहा है वो भी साथ में बैठकर ज्ञान सुनते हैं, वो भी साथ में बैठ के भोजन खाते हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई सिक्योरिटी से हो, चाहे कोई भोजन में सेवा कर रहा हो, किचन में सेवा कर रहा हो, कहीं पर भी सेवा कर रहा हो, लेकिन हम सब साथ में बैठ के भोजन खाते हैं, हम सब साथ में बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं। जैसे ये क्लास है, हम इतने छोटे हैं लेकिन आप इतने बड़े हैं फिर भी हमारा सुनते हैं, तो तो ये भी हाँ कितनी महानता है कि आप लोग सुनते हैं। तो ये भी एक है कि हमारे ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा है ना, हम जब दूसरों से मिलते हैं, लौकिक लोगों से मिलते हैं या बाहर के संसारी लोगों से मिलते हैं, तो भी एक ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत महान और ये बहुत तुच्छ, ऐसा भी वो नई फीलिंग होनी चाहिए उनको, उनको अपनापन फील होना चाहिए। हम हमेशा थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन कर ही देते हैं यहाँ पे कि वो एक पॉइंट है पुरुषार्थ में कि हम अलग और ये अलग, लेकिन वो उनको उन तक वो फीलिंग नहीं जानी चाहिए। जैसे उस दिन बात की थी भाषाओं पर कि है ना, जब अमंगस्ट हमारे अंदर ही कि अगर दो बोल रहे थे ना कि दो पंजाबी लोग पंजाबी में बात करेंगे और तीसरे को नहीं आती है तो हिंदी में ही बात करें। हमारी दादियां देखो सिंधी में बात नहीं करती, वो तो सब हिंदी में ही बात करती। बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उसके बाद बाबा ने सिंधी तो नहीं कहा ना, हिंदी में ही सब चर्चा चली, हिंदी में ही सब क्लासेस है हमारे पास। तो उसी तरह से हिंदी हमारी भाषा है, तो वो एक ध्यान देना है हमको। और दूसरा कि जगह, अगर हम किसी जगह से होते हैं तो जैसे देखते हैं ना, अगर कोई बीमार होता है तो सारे वो स्थान वाले पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये स्टेज से है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी थोड़ा इनइक्वालिटी है। 11th पॉइंट, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। इसमें उन्होंने दिया था इंक्लूसिव सिटीज। तो हमने इस पॉइंट को ऐसे लिया कि जब भी हम कहीं सेवा के लिए जाए तो कुछ ना कुछ हमारा, जैसे बोलते हैं ना फ्लैग गाड़ के आओ, तो जैसे कि कुछ ना कुछ हमारा बना के आए हम, तो बहुत क्रिएटिविटी या कुछ है ना स्थापन करके आए। तो बहुत सारे भाई बहन के एक्सपीरियंसेस है, विहासा में भी है ऐसे कि जहाँ पर भी वो जाते हैं और सेवा करते हैं तो वहाँ पे लोग कुछ नहीं ज्ञान में नहीं चलते लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन रूम खोल देते हैं, और वहाँ की फिर नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग हॉस्पिटल है या जो भी है या उनकी कोई इंडस्ट्री है, कंपनीज है, तो अपना मेडिटेशन रूम खोलते हैं और एटलीस्ट उनके जो लोग हैं उनको बोला जाता है कि रोज 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो यहाँ पर। तो वो एक है। और दूसरा, जब भी हम किसी की सेवा करें तो उसको सकाश दे। एक बार दादी जानकी का अनुभव है, वो बीकानेर की क्वीन आई थी तो बाबा ने उनको उनकी सेवा के लिए भेजा कि जाओ बच्ची इसको ज्ञान सुना के आओ। तो दादी गए तो बीकानेर की वो जो क्वीन थी, वो क्वीन ने कहा तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तो दादी ने कहा मैं आपको भगवान की कहानियां सुनाने आई हूँ। तो क्वीन ने कहा कि यहाँ तो लोग मेरे पास है ना कुछ मांगने आते हैं और तुम भगवान की कहानियां सुनाने आई हो। फिर दादी ने बहुत अच्छी चर्चा की उनके साथ और वो जो क्वीन थी वो बहुत बहुत खुश हुई वो। फिर दादी वापस आ गए और शाम का योग चल रहा था और दादी योग कर रहे थे तो बाबा धीरे धीरे चल के दादी के पास आए और बाबा ने कहा किसको याद कर रही हो? तो दादी ने कहा मैं आपको याद कर रही हूँ और शिव बाबा को याद कर रही हूँ। फिर बाबा ने वापस पूछा किसको याद कर रही हो? तो दादी ने कहा मैं बाबा को याद कर रही हूँ और मैं शिव बाबा को याद कर रही हूँ आपको। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बीकानेर की जो क्वीन की सेवा करके आई हो ना, तो उस आत्मा का योग आपको बाबा से जुड़वाना है। तो कैसे, जब किसी आत्मा की सेवा करके आते हम तो उसको फिर सकाश भी देना हमारा कर्तव्य होता है। 12th पॉइंट हमारे लिए नहीं है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करें, स्थाई खपत और उपादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए नहीं है। फिर 13th पॉइंट, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल, नहीं अपने लिए नहीं है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्या करें हम इसमें? पावरफुल थॉट्स के विचार करें, हाँ ठीक है ये भी हो सकता है। और जो व्यर्थ है उसको खत्म करना, जैसे वो संडे की मुरली की पॉइंट है, स्लेट क्लीन। फिर जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, अर्जेंट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट के लिए हम क्या क्या करें, तो बहुत सारे जैसे साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो साउंड पोल्यूशन में हम सोच रहे थे, हम हमारी कार्स जब कैंपस में चलाते तो हॉर्न्स नहीं बजाना चाहिए, और बहुत सारे ड्राइवर्स जो हमारे हैं वो नहीं बजाते, तो हॉर्न्स चाहे वो सेंटर हो चाहे वो कैंपस हो हमारा, तो नहीं होना चाहिए। और जब भी हम बाहर भी जाते हैं सैर करने, तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करनी है ना। और कभी कभार हम बाबा मिलन के लिए यहाँ आ जाते लेकिन सोचते पिकनिक के लिए आए हैं, और है ना जाते बाहर और आवाज़ करते तो सब हमको देखते हैं ना, तो उस टाइम पर भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट वाटर, पानी, नो वेस्टेज। पानी, पानी का बहुत सारे भाई बहन देखा जाएगा, या आप अपने आप को देखें, जब भी हम ब्रशिंग करते हैं तो टैप चालू रखते हैं और तब तक ब्रश चल रहा है तब तक पानी भी चल रहा है, जब फेस वॉश करते हैं तो पानी का टैप जोर से खोल कर करना, वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ही आप पानी को बचा सकेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब क्लोथ्स वॉश करते हैं तभी भी पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं वो सब पता होना चाहिए हमको। हाँ देखो वो भी अच्छा है, 3 मिनट में बात लेके निकलना ही है तो पानी उतना कम जाएगा उसमें, नहीं तो कभी कभार शावर चालू कर देते हैं और बस है ना दूसरे भी काम चल रहे हैं और शावर अपना चल रहा है, तो बहुत बहुत अगर हम प्रकृति की ऐसी सेवा करेंगे तो प्रकृति अंत में हमारी भी सेवा करेगी। फिर एयर, तो जिसकी भी कार्स है, गाड़ियां हैं, उसकी सर्विसिंग कराना ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। और हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 तत्वों को एटलीस्ट 2 टाइम तो सकाश देना, और जैसे उस दिन बताया वो 7 ड्रिल्स बताई ना आपने, तो वो 7 अभ्यास भी कर सकते। फिर उसके बाद ये भी हमारा नहीं है, 14 पॉइंट, कंजर्व सी एंड मराइन रिसोर्सेज। तो हम सब वेजिटेरियन है, हम तो उसको हमेशा संभाल ही रहे। 15वां पॉइंट, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सतत उपयोग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने वाले स्थलीय परिस्थिति, जाने दो यार छोड़ दो, परिस्थिति के प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि शरण, इसको मतलब इरोजन वो फाइंड आउट किया था हमने, और जैविक विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। इंग्लिश में प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो क्लाइमेट में आया ना क्या कोई पॉइंट आ सकता है ज्ञान का इसमें, तो बोलो। हाँ क्या, नहीं ठीक है। हाँ तो हमने क्लाइमेट पे बात की ना, पेड़ पौधे उगाओ जो हम करते हैं यहाँ पर, वही उनको काटना नहीं, ज्ञान में उस पॉइंट को, हाँ उनसे प्यार रखो, प्रकृति को सकाश दो, योगिक खेती। हाँ योगिक खेती, अच्छा योग का प्रयोग करना। फिर 16वां पॉइंट, इंक्लूसिव सोसाइटीज, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेही बनना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ये भी हमारे लिए नहीं, नहीं ना। तो अभी लास्ट के पॉइंट्स ऐसे ही है, लास्ट वाला एक पॉइंट है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप। अभी इसमें हम देश और विदेश मिलकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, जैसे कभी क्लास में कहा था साउथ अफ्रीका में लेटर टू गॉड करके एक चला था और सारी कंट्री लेटर टू गॉड लिख रही थी, या तो इंडिया में जब बिलियन मिनट्स ऑफ गुड विशेस बैंक चला था तो सारे लोग गुड विशेस दे रहे थे और चार्ट्स बना रहे थे, और दूसरे लोगों को भी हमने ये दिया था ना, मतलब दूसरों के लिए ये सेवा की थी कि कैसे युक्ति से ज्ञान मिलाए। तो ऐसे देश विदेश मिलकर कोई प्रोजेक्ट करे कि धूम मच जाए पूरी दुनिया में कि ब्रह्मा कुमारी कुछ कर रही है, तो ऐसे कोई इंटरनेशनल लेवल पर कुछ होना चाहिए। बिलियन मिनट्स ऑफ, हाँ तो ऐसा और भी कोई प्रोजेक्ट 2017 में हम कर सकते। तो ये 17 गोल्स थे, इसमें से जो हमको करना है वो कर सकते हैं 2017 के लिए अपने पुरुषार्थ में। और अभी हमारे पास 5-7 मिनट है, 16 हम लोग नहीं कर रहे। इंक्लूसिव सोसाइटीज, ओम शांति।